आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार प्रशाली जैन के साथ। छाया कोषाध्यक्ष टेड ओब्रायन लेबर सरकार के खर्च और कर नीतियों की आलोचना करते हुए अपनी टैक्स और खर्च वाली दलील को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने महंगाई से निपटने के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स के बदलाव की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्याज दरों में की गई बढ़ोतरी सीधे तौर पर सरकार के अत्यधिक खर्च का नतीजा है। हालांकि RBA के आंकड़े बताते हैं कि निजी खर्च महंगाई का बड़ा कारण है, फिर भी टेड ओब्रायन का कहना है कि समाधान ऑस्ट्रेलियाइयों पर ज्यादा कर लगाने में नहीं बल्कि सरकार के खर्च को कम करने में है। वहीं वित्त मंत्री कैटी गैलगर ने सरकार द्वारा कैपिटल गेन्स टैक्स की समीक्षा का बचाव किया है। ये स्पष्टीकरण ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया कि अधिकारी 50% कैपिटल गेन्स टैक्स छूट में कटौती पर विचार कर रहे हैं। वहीं लिबरल पार्टी के फ्रंट बेंचर एंड्रू ब्राग ने फेडरल सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया की सेना की मालिकाना हक वाली दर्जनों संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया गया है। इनमें सिडनी और मेलबर्न की ऐतिहासिक विक्टोरिया बैरिक्स भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में कुल 64 स्थलों को बेचा जाएगा, जिससे लगभग $2 अरब जुटाए जाएंगे। इस राशि का उपयोग देश की रक्षा क्षमताओं में दोबारा निवेश के लिए किया जाएगा, जबकि रखरखाव पर हर साल करदाताओं के करीब $100 मिलियन की बचत होगी। ये बिक्री ऑस्ट्रेलिया की रक्षा संपत्तियों के एक ऑडिट के बाद की जा रही है। ये संपत्तियां देश भर में फैली सैकड़ों जगहों पर स्थित हैं और कुल मिलाकर लगभग 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स का कहना है कि इस जमीन के कुछ हिस्सों का उपयोग नए आवासीय अवसरों के लिए भी किया जा सकता है। सेनेटर ब्रैक का कहना है कि वे ज्यादा आवास उपलब्ध कराने के पक्ष में हैं, लेकिन उनका तर्क है कि सरकार को ये संपत्तियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसका कारण उनके अनुसार सरकार के लापरवाह खर्च हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पामर ने इस दावे को खारिज किया है कि अमेरिकी राजनीतिक रणनीतिकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने उनके 2019 के फेडरल चुनाव अभियान को प्रभावित किया था। ये दावे सप्ताहांत में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी किए गए टेक्स्ट संदेशों में सामने आए, जो जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों यानी एपस्टीन फाइल्स का हिस्सा है। 2019 में चुनाव के 2 दिन बाद भेजे गए एक टेक्स्ट संदेश में, जो कथित तौर पर स्टीव बैनन से जुड़े एक खाते से भेजा गया, लिखा था, मैंने क्लाइव पामर से चीन विरोधी और जलवायु परिवर्तन विरोधी $60 मिलियन के विज्ञापन करवाए। क्लाइव पामर ने इस दावे को और किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्हें स्टीव बैनन का देर रात एक फोन कॉल आया था। वहीं नए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रथम राष्ट्र ऑस्ट्रेलियाई लोगों में ब्लड कैंसर से मौत का खतरा सामान्य आबादी की तुलना में 5 गुना अधिक है। ल्यूकेमिया फाउंडेशन द्वारा कराए गए एक शोध के अनुसार अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर ऑस्ट्रेलियाई ब्लड कैंसर से कहीं अधिक दर पर जान गंवा रहे हैं। साथ ही इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उन्हें गैर इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाइयों की तुलना में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्पेन ऑस्ट्रेलिया के नक्शे कदम पर चलते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है जिसने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर आयु सीमा लागू की हो। इस कदम पर उन देशों की करीब से नजर है जो इसी तरह के कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ी अवैध सामग्री और बिना सहमति के बनाए गए यौनिक डीप फेक जैसे कंटेंट फैलने दिए जाते हैं। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि स्पेन अपने बच्चों को, उनके शब्दों में, डिजिटल वाइल्ड वेस्ट से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। और अंत में खबरें भारत से। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हित को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन क्षेत्रों में कभी समझौता नहीं किया। उनके मुताबिक ये समझौता भारत के आर्थिक विकास को मजबूती देगा और किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और श्रम प्रधान उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने इसे भारत के हित में अब तक की सबसे बेहतर ट्रेड डील बताया। विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ हटाने की घोषणा वहीं से आना स्वाभाविक है। उन्होंने विपक्ष के हंगामे की आलोचना भी की। सरकार का आकलन है कि इस समझौते से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कॉम्पोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और MSMI सेक्टर को खास फायदा होगा। भारत और अमेरिका जल्द ही ट्रेड डील को अंतिम रूप देकर संयुक्त बयान जारी करेंगे। इसी के साथ 4 फरवरी 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।